निर्वर्धमान महान जनवितरणी अपना गाथा 109 से 112 तक चल रहा है, इसमें अपन समय सार के अनुशीलन में पेज नंबर 179 पर पढ़ रहे थे, है ना। वहां एक प्रश्नोत्तर है, हम प्रश्न, उक्त कथन का निष्कर्ष क्या है, कहा था ना उसमें, तो कहते स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न बालक को एकांत से अकेले पुरुष का कहना या एकांत से अकेले स्त्री का कहना जिस प्रकार मिथ्या है, उसी प्रकार जीव पुद्गल के संयोग से उत्पन्न मिथ्या तुरागादि को एकांत से अकेले जीव का कहना या एकांत से अकेले पुद्गल का कहना मिथ्या है। निष्कर्ष ये है, प्रवृत्ति नित्य मतेदना मुक्ता, कितना कितना कहते आए थे, माने बैलेंस रखने की जरूरत है। जब हम वो एक बात को बहुत मजबूती से कहते हैं तो वो अपर पक्ष उस वक्त गौण है, उसका निषेध नहीं है। भाषा कभी कभी निषेध की भी आती है, अस्ति नास्ति से कथन करते हैं तो निषेध की भाषा भी आती है कि जीव का कर्ता जीव ही है, पुद्गल नहीं, पुद्गल नहीं, ऐसा आया ना। तो वो कहते हैं कि अब उसमें शुद्ध निश्चय ऐसे ऐसा लगाया, तो वो नए लगा दिया ना, तो वो नहीं जो है वो दोष पैदा नहीं कर पाती ही है ना, ही कि जीव ही करता है पुद्गल नहीं, तो ही में जो एकांत झलकता है वो नए लगा देने से वो एकांत नहीं होता है। फिर कितनी ही और कितनी ही मजबूती से कहें, है ना, लेकिन वो लगी है ना अपेक्षा, वो उसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा यदि आपका निमंत्रण नहीं आया तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन नहीं आऊंगा। अगर किसी ने कहा कि मर जाऊंगा लेकिन नहीं आऊंगा, तो वो आएगा कि नहीं आएगा। उसने लगाया ना, यदि आपका आमंत्रण नहीं आया तो इस शर्त के साथ वो दृढ़ता है कि तुम समझो कि अरे क्या होता है, दो नहीं दो तो झकमा के चले जाएंगे, आ ही जाएंगे। आपको ये भ्रम न हो जाए इसके लिए वो दृढ़ता से वो बात कहता है। और ये बात, ये अपेक्षा लगाई है, यदि वो अपेक्षा की पूर्ति होती है तो उसमें कोई दोष नहीं आता है। तो वो जो कठोर शब्द आते हैं निषेधवाचक, उनसे घबराना भी नहीं चाहिए और जहां आवश्यकता हो उनका प्रयोग भी करना चाहिए। अपन ने वो अनेकांत साधवाद का लेख लिखा ना, उसमें लिखा है कि ही का प्रयोग अपने कथन में दृढ़ता लाने के लिए है, अपर पक्ष के निषेध के लिए नहीं, और भी का प्रयोग ढुलमुल बताने के लिए नहीं है कि ऐसा भी है वैसा भी है। जिस अपेक्षा में बोल रहा हूं वो वैसा ही है, लेकिन अन्य अपेक्षा लगाओगे तो उससे अन्य प्रकार का भी हो सकता है, तो ये बात है। इसलिए अब हमको ये बहुत सावधानी की जरूरत है। जब यही बात कही जाती थी तो हमारे कुछ लोग कहते थे कि हम यदि साथ में वो बात बताएंगे तो ये बात ढीली पड़ जाएगी, तो कहते इसीलिए तो उसके बारे में कुछ भी कहने से मौन किया है आपको। गौण का मतलब ही होता है चुप्पी, ऐसा लिखा है उस बारे में। और वो कहते हैं कि इसलिए कोई ये ना समझ ले कि वो नहीं है, इसलिए उसके बारे में चुप नहीं रहकर और साथ में वो भी बताता जाए तो फिर ये तो प्रमाण का कथन हो जाएगा। इस अपेक्षा से जो इस अपेक्षा से भी वो नए का कथन ही नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने गौण कहां रखा, तुमने तो उसके बारे में बोल दिया ना, तो गौण तो रहा नहीं और निषेध कर दिया तुमने। उसके बारे में गौण रखना था तो गौण का अर्थ चुप्पी है। देखो फिर प्रश्न कि यह सब तो ठीक है, कौन सा कि वो अकेली माँ का भी नहीं कह सकते बेटे को, ना अकेले पिता का कह सकते हैं, हैं? अपेक्षा अपेक्षा अलग अलग है, दोनों अपेक्षाएं लगानी पड़ेंगी। कि यह सब तो ठीक, पर वे रागादि सूक्ष्म शुद्ध निश्चय ऐसे किसके हैं, जीव के या पुद्गल के। देखो बहुत से लोग ऐसे अपने से कहते ना कि तुमने एक निश्चय से ऐसा है, दोहान से ऐसा है, अभी नए में तो तुम्हारे ठीक है, लेकिन तुम तो ये बताओ कि सच में क्या है, क्या है? बोलते ना आपस में कि तुम सच्ची बात बताओ ना, जी अपेक्षाएं अपेक्षाएं मत बताओ, अपेक्षाएं अपेक्षाएं मत बताओ, तुम तो क्लियर बोल दो कि क्या बात है। उसको वो इस भाषा में बोलता है कि सूक्ष्म शुद्ध निश्चय ऐसे क्या है, ये क्लियर बोलो। उत्तर, अरे भाई पहले कह दिया था ना कि सूक्ष्म शुद्ध निश्चय ऐसे उनका अस्तित्व ही नहीं है, अब इसके अधिक और हम क्या कहें। क्या मतलब ये है कि वे दोनों मिले, हम इस बात को ही नहीं मानते, ये नए हमने माने, ये नए सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नए है या तो परम शुद्ध निश्चय नए है या परम भाव ग्राही द्रव्यार्थक नए है, वो कहते हैं पहले मिले माने क्या। जैसे हम दोनों देखो एक ब्रह्मचारी और एक ब्रह्मचारिणी का संयोग हो जाए और उनके जो बच्चा हो उसे किसका कहोगे, ब्रह्मचारी का या ब्रह्मचारिणी का? समझ रहे ऐसा ही प्रश्न है बिल्कुल। वो कहता ना बेटा माँ का है कि बाप का, तो कहा किसी अपेक्षा माँ का है किसी अपेक्षा बाप का है, तो वो कहता है माँ ब्रह्मचारिणी है और पिता ब्रह्मचारी है और उनकी जो संतान हुई है वो किसकी, क्या जवाब दे मैं आशित प्रश्न। कैसी बात करते हैं, उनका संयोग हो ही नहीं सकता, वे ब्रह्मचारी है ना, तुम कह रहे ना, तो उनके बेटा हो ही नहीं सकता, उसका बेटा है ही नहीं। अब तुम जबरदस्ती पूछ रहे कि उसका जो बेटा है वो माँ का है कि ब्रह्मचारी का है कि ब्रह्मचारिणी का है, क्योंकि ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी के बेटा होते ही नहीं। ऐसा ये नए उस संयोग की बात को स्वीकार करता ही नहीं। तो वो कहे कि नहीं सब हो जाए तो फिर वो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी कहाँ रहे, फिर तो वे माँ बाप हो गए ना, और माँ बाप हो गए तो वो माँ बाप वाला नए लग जाएगा उनको, आप समझे ना, फिर वो ये नए नहीं लगेगा ना, फिर वो माँ बाप वाला नए लगेगा ना, ऐसे ये बात है। अरे भाई पहले कह दिया था ना कि शुद्ध निश्चय नए उनका अस्तित्व ही नहीं है, अब इससे अधिक क्या कहें। यदि मिथ्यात्वादि प्रत्यय ही कर्म करते हैं तो करते रहें, इसमें जीव का क्या आया, इससे जीव का क्या लेना देना, क्योंकि शुद्ध निश्चय ऐसे वे जीव के नहीं हैं। यह बात सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध ऐसे सब जीव शुद्ध ही हैं, यह आगम वतन से सम्मत ही है। अब वो कहते हैं ना कि राग द्वेष तो उसके हो गए, कहते भैया हो गए, शुद्ध निश्चय नए का विषय भूत जो आत्मा है उसमें नहीं है, जो राग द्वेष को वो कहते ये अलग है और ये अलग है नहीं कहता है, वो तो उसकी दृष्टि में तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं है क्या। यदि कोई कहे कि मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्वी होकर यह जीव मिथ्यात्वादि कर्मों को भोगता है अतः कर्ता भी होता है, देखो ये तीसरी गाथा है ना, जब उसमें आया ना वो भोगता की बात बीच में आ गई, तो एक शिष्य का प्रश्न है कि तुम कह रहे कि उसने किया ही नहीं, उसने किया ही नहीं, लेकिन भोग तो रहा है, नरक निगोद में पड़ा है, संसार में अनंत दुख उठा रहा है, और तुम्हारी इस दोनापत्ति करने से क्या होता है कि उसमें राग द्वेष हुए ही नहीं, वो दुखी है ही नहीं, वो दुखी है ही नहीं, ऐसा नहीं लगता बिल्कुल दोनापत्ति कर रहे हैं, जबकि वो इतना दुख उठा रहा है। यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि शुद्ध निश्चय नैसे आत्मा कर्मों का भोक्ता भी नहीं है। जिस नैसे करता नहीं है उस नैसे भोक्ता भी नहीं है, जब वह भोक्ता ही नहीं है तो कर्ता कैसे होगा। इस प्रकार यह शास्त्र सम्मत ही है कि आत्मा शुद्ध निश्चय नैसे कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं है। अब जो एकांत से जीवों को कर्म का अकर्ता मानते हैं उनके मत में क्या दोष है ये बताते हैं। देखो आपने खुद अकर्ता सिद्ध किया ना, और अब कहते जो ऐसा मानते हैं उनकी क्या गलती है, तो क्या फर्क हुआ। कहते हमने तो इस नए से बताया है क्या, और तुमने उसे सर्वथा मान लिया, फिर यही तो झंझट है। जैन दर्शन को समझने में सबसे बड़ी तकलीफ है, जो बैलेंस बिगड़ा और गया तो कहते हमारी समझ में तो नहीं आता, कि नहीं आता तो नहीं आता है। ये तो तुम्हें दोनों बातें एक साथ दिखेंगी तो ही तुम्हारी समझ में आया, ये माना जाएगा, तो ही तुमने देनी हो, नहीं तो तुम देनी ही नहीं हो। कभी त्रिकाल शुद्ध भी दिखे और वर्तमान में अनंत दुखी भी दिखे क्या, और उन दोनों में आपको परस्पर विरोध नहीं लगे, तो ही तुम उस बात को सही समझे हो, नहीं तो सही समझे नहीं क्या। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि सीता जी के भाई का नाम था भामंडल, जानते हैं, पिता का नाम था जनक, पति का नाम था राम, और बेटों का नाम था लव और कुश। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि सीता मां थी, पत्नी थी, बेटी थी या बहन थी, तो आप कहें चारों थी, ये सीधा सीधा जवाब है। तो चारों थी तो फिर चारों होंगी तो कितने परसेंट मां थी, कितने परसेंट बहन थी, कितने परसेंट पत्नी थी और कितने परसेंट बेटी थी, बोलो। कहने नहीं, चारों ही सेंट परसेंट थी, एक इकाई में 400% होते हैं, जहां होते हैं अपनी अपनी अपेक्षा से। तो इसकी जांच करें तो ये कहते हैं, अब जरा सीताजी को जरा बगल में खड़ा कर दो। सीताजी को तो इसलिए लाया हूं मैं कि जिससे आपके दिमाग में पवित्रता रहे और उदाहरण को आप यहां वहां भटका के नहीं ले जाएं। एक महिला के सामने उसके पति को, बेटे को, भाई को और पिता को खड़ा कर दें चार को, और उससे कहें कि मुझे एक आदमी को मारना है, तो तू बता कि इन चार में से मैं किसको मार दूं, क्या वो जवाब दे सकती है कोई? तो परीक्षा जरा और कठिन करो कि मैं एक से लेकर पांच तक बोलूंगा और इसके बीच में तूने नहीं बताया तो मैं चारों को मार दूंगा, क्यों? अब सवाल मारने का नहीं रहा, तो बताने का रह गया ना कि वो पांच मिनट के अंदर पांच बोलेगा वो, तब तक वो चाहे तो तीन में से जिनको चाहे वो बता सके। अब तो बोलना ही पड़ेगा ना दिलीप जी, कहां बोलेगी तो क्या बोलेगी कि मुझे मार दो, उन चार में से किसी को मार दो वो नहीं कह सकती। अब तो सीता जी को तो अपन ने अलग कर दिया था ना, इसलिए किया था वो बात, आगे कहता हूं कि कोई महिला कदाचित ये सोचे, सीता जी तो नहीं सोच सकती थी कि भैया ये तो बहुत कठिन बात है, अब तीन को बचाना है, एक को मर जाने दें तो तीन बच सकते हैं। अब इसलिए कहेगा पिता तो क्या है, इनकी तो उम्र हो ही गई है, साल दो साल तो जाने ही वाले हैं, बाकी तो अभी पति भी जवान है, बेटे बच्चे छोटे छोटे हैं, भाई भी जवान है, तो एक कह दे भाई इसे वो मार दो, कह सकती है? यदि वो कोई महिला कह दे तो मैं कहूंगा कि वो बेटी ही नहीं है। आप कह रहे नहीं है बेटी तो है उसकी, कि जब वो उसे मारने की कह रही है तो काहे की बेटी, हम उसे बेटी मानने को तैयार नहीं, उसका बेटी बना तो उसी वक्त खत्म हो गया। फिर वो ये सोचे कि पति रहेगा तो बच्चे तो बहुत पैदा हो जाएंगे क्या, इसलिए कह दे बच्चों को मार दो, कह सकती है? नहीं। यदि कह दे तो मैंने सीता जी को इसलिए अलग किया था, तो हम उसे मानेंगे कि वो सच्ची मां ही नहीं है। अब ऐसे ही भाई का लगाओ, ऐसे ही पति का लगाओ, यानी वो कभी नहीं कह सकती है, क्योंकि उसकी दृष्टि में चारों 100% उसके लिए समझ लो उपादेय हैं, ग्रहण करने योग्य हैं। अब जो बेटा है उसकी दृष्टि से उसे 100% वो मां ही दिखना चाहिए, है तो वो पत्नी भी है उसी वक्त, और बहन भी है और बेटी भी है, लेकिन बेटे की निगाह में यदि वो पत्नी दिखी तो वो बेटा नहीं, समझना। अभी तो वो मां की बात चल रही थी ना, अब बेटे की तरफ आ गई है वो किसी की पत्नी, और जैसा पति पत्नी का व्यवहार होता है वो उसके साथ वैसा ही करेगी, तो भी बेटे को दृष्टि में एक सेकंड को भी यदि उसका पत्नीपन ख्याल में आया तो वो बेटा नहीं। ऐसे ही पति को, कि पति को जो बेटे की मां है लेकिन मांपन याद आया उसमें तो वो पति नहीं, फिर वो पति नहीं रह सकता। ऐसे चारों पर लगाओ, भाई को बहनपन के अलावा कुछ और दिखा, अब उसे दिखना नहीं चाहिए, वो उसमें रहेगा और उसे नहीं दिखना चाहिए। देखो कैसी गजब बात है, उसमें मांपन भी रहेगा, बेटीपन भी रहेगा, पत्नीपन भी रहेगा, और भाई बहनपन जो भी है वो रहेंगे चारों, उनको वहां से हटाया नहीं जा सकता, और इन चारों को अपनी दृष्टि में से हटाना पड़ेगा, और दृष्टि में ऐसी ताकत है, और ऐसा हम निरंतर करते हैं, पापी से पापी, व्यभिचारी से व्यभिचारी, रावण जैसा आदमी भी अपनी मां बेटी और बहन के साथ जैसा व्यवहार उसने सीता से किया वैसा व्यवहार किसी कीमत पर नहीं कर सकता, है ना? माने उसने चारों चीजें कूट कूट के भरी हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में ऐसी ताकत है कि उन जो हमारे अपेक्षा वो है तो सिर्फ हमें वो ही दिखे और बाकी कुछ नहीं दिखे। इस उदाहरण को थोड़ा और शार्प करें जिससे आपकी समझ में आएगा। जरा सोचना, बाप और बेटे भोजन करने बैठे थे और मां और पत्नी परोस रही थी, कितने आदमी थे? बोल दे रहे, सोच सोच जरा, फिर बोलता हूं। बाप और बेटे जीव रहे थे, मां और पत्नी परोस रही थी, सोचना सब है, फिर कितने आदमी थे है? क्या बोल रहा है? चार के तीन, क्योंकि बेटे की मां और बाप की पत्नी परोस रही थी। अभी पुराने जमाने में बहुत समय तक पत्नी पति से बात तक नहीं करती थी सबके सामने, यहां तक कि उसकी थाली में रोटी भी नहीं परोसती थी, वो अपने देवर की ससुर की थाली में परोसेगी और फिर वो उसे उसके पति की थाली में ट्रांसफर करेगा। ऐसा हमने देखा है। क्या क्या ऐसा था। इतनी वो मर्यादा बहुत दिनों तक रहती थी, फिर 10-15 साल बाद टूट जाती थी। लेकिन वो मां इससे ज्यादा आगे के जमाने की हो गई थी, लेकिन इतनी मर्यादा तो वो रखती ही थी कि वो पहले बेटे को परोसती थी और बाद में पति को। तो पति को गुस्सा आ गया, ए सुनती है, मैं देख रहा हूं बराबर कि तुम पहले बेटे को परोसती थी है और अब मुझे बाद में परोसती है, ऐसा क्या है, क्यों ऐसा करती है, तू बोल, तू इसकी पत्नी है कि मेरी, क्या कहा, क्या प्रश्न किया इसने, मुझे बाद में परोसती, इसे पहले परोसती है, तू इसकी पत्नी है कि मेरी, उसने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई आदमी ऐसा प्रश्न भी उससे कभी कर सकता है, और कोई नहीं उसका पति। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन सन्नाटे में आगे रह गई, चुप रह गई, क्योंकि वो गुस्से में था, दोनों ही गुस्से में बोलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना, लेकिन बेटा तो बाप का था ना, उसमें भी उतनी तेजी थी, गए पापा क्या कहा तुमने, अब कहा सो कहा, द्वारा मत कहना, मैं तुमसे पूछता हूं कि तेरी मां है कि मेरी, मेरी मां मुझे पहले नहीं परोसेगी तो तेरे को परोसेगी, वो समझता है कि मेरी पत्नी मुझे पहले नहीं परोसेगी तो दूसरे को परोसेगी, क्योंकि उस बेटे को वो 100% अपनी मां ही दिखती है, वो किसी की पत्नी भी है, उसे पत्नीपन तो नहीं दिखना चाहिए अपनी दृष्टि से, लेकिन ये तो उसके ज्ञान का गेय रहना ही चाहिए ना कि वो किसी की पत्नी भी है और वो उससे वैसा व्यवहार करेगी। ऐसे ही पति को भी ये ध्यान में तो रहना ही चाहिए, भले ही उसे वो मां के रूप में ना देखे, लेकिन अब ये किसी की मां है, इतना ध्यान तो उसे रहना ही चाहिए ना। तो जैन दर्शन ऐसी तलवार में धार चलने जैसा है कि जब जिसकी जो अपेक्षा चल रही हो वही दृष्टि आप पूरी तरह से निगाह में रखो और दूसरी बात बिल्कुल उसके बारे में चुप, क्या ना निषेध करो और ना उसका प्रतिपादन करो, क्योंकि निषेध करते या प्रतिपादन करते ही वो वस्तु मुख हो जाती है जिसे हमें गौण करना है। चलो अब जो एकांत से जीव को कर्मों का आकर्ता मानते हैं उनके मत में क्या दोष है बताते हैं। यदि एकांत से अकर्ता कहा जाए तो जिस प्रकार शुद्ध निश्चय नय से अकर्ता है उसी प्रकार व्यवहार नय से भी अकर्तापने को प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने पूर्णता माना कि पूरी तरह अकर्ता ही है तो सब नयों से अकर्ता हो जाए। पूर्णता का मतलब क्या, इस नय से अकर्ता है और तुमको नहीं नहीं वो तो अकर्ता ही है तो फिर तो वो सब नयों से अकर्ता हो जाएगा ना। सर्वथा अकर्ता मानने पर संसार के अभाव का प्रसंग प्राप्त होगा, जिस जीव ने कर्म नहीं किए तो ऐसे कर्म बंद क्यों हो गया। अगला समय ना जो अपन बात हमेशा कहते रहे ना उससे उल्टी बात आएगी, बिल्कुल घबराने नहीं पूछ रहे। देखो राग हमसे भिन्न है और राग पुद्गल है, कह रहे ना, तो जैसा देह भिन्न है वैसे ही राग भिन्न है, नहीं नहीं क्वालिटी तो अलग है, क्योंकि राग तो चेतन की पर्याय है, उसे तो पुद्गल अध्यात्म में कहा। अब राग तो है ना, अब राग भी दो तरह का होता है, एक तुम्हारा राग और एक मेरा राग। अब मेरा राग मेरे से भिन्न है और तुम्हारा राग मेरे से भिन्न है, इसमें कुछ अंतर है कि राग भिन्न है इसमें काम चल जाएगा, कहने राग भिन्न है भिन्न में लेकिन भाई साहब मेरे राग के निमित्त से मेरे को कर्म का बंध होता है और तुम्हारे राग के निमित्त से मेरे को कर्म का बंध नहीं होता। यदि अंतर नहीं है तो ये अंतर कहां से आया? इसलिए वो राग मेरा राग में कुछ ना कुछ मेरापन तो है ही। यदि वो सर्वथा ही उसमें मेरा नहीं है तो जैसे तुम्हारे राग के कारण मुझे बंध नहीं होता है ऐसे ही मेरे राग के कारण मुझे बंध नहीं होना चाहिए। ये तकलीफ भरी हो जाएगी। फर्क तो है तो क्या फर्क है कि वो तुम्हारा जो राग है वो मेरे लिए अजीब तत्व है और मेरा जो राग है वो मेरे लिए आश्रित तत्व है। समझ में आया ना? वहां दोनों को पुद्गल कहा है। पुद्गल कहा ना कि जीव हमारे राग को तुम्हारे राग को भी। अब इसमें भी बारीकी में गए हमने जब पर से भिन्नता जानी थी तो तुम्हारा राग तो तुम्हारी पर्याय होने से तुम्हारा द्रव्य तुम्हारा गुण और तुम्हारी पर्याय ये तीनों हमसे पर है ना। ये तुम्हारा राग तो पर द्रव्य है क्योंकि पर की पर्याय है समझिए ना। और हमारा राग पर द्रव्य नहीं पर पर्याय समझे ना। वो हमारी है क्योंकि वो नहीं तो संसार का अभाव हो जाएगा। नहीं तर्क दिया ना क्योंकि फिर वो राग हमें हो उसे कर्म बंद होगा ना नहीं चाहिए। कर्म बंद नहीं होगा तो उदय में नहीं आएगा तो फिर राग नहीं होगा कोई फिर दुख नहीं होगा। लेकिन ये सब होता है। यदि तुम ऐसा मानोगे कि व्यवहार न से भी ये आत्मा रागादि का कर्ता नहीं है तो संसार के अभाव का प्रसंग हो जाएगा। संसार क्या संसार माने क्या भैया? ये स्त्री पुत्र घर मकान इसका नाम संसार नहीं है। ये जो लोग तीन लोग कनेक्शन बनाते इसका नाम संसार नहीं है। इसका नाम तो लोक है। गुरुदेव कभी कभी बोलते थे प्रथम में चर्चा में कि जब हम संसार में थे तब एक दफे हम दुकान पर बैठे थे एक केस में हमको बड़ौदा जाना पड़ा गवाही देने। तो मैं हंसता था कि गुरुदेव अभी आप वो क्यों रहे क्या क्यों गुजरात में गृहस्थ दशा को संसार बोलते हैं और जो हमने दीक्षा ले ली घर छोड़ दिया तो उसे संसार नहीं बोलते। तब वो संसार अब वो जो गुजरात की टोन है वो आप हिंदी में चलाओ तो कैसे चलेगी? आपके घर में नहीं होता है जब आपका चार बच्चा बोलता है पापा जब मैं छोटा था तब मैं ऐसा कहता ऐसा बेटा अब तो तुम बड़े हो गए हो। हम कहते हैं ना बेटा अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो ना क्यों वो कहां से सीखता है? क्यों आप उसको कहते हो कि जब मैं छोटा था तब ऐसा करता था वो भाषा सीख गया तो वो भी उसी भाषा में बोलता है कि जब मैं छोटा था। ऐसा में भाषा चल पड़ती है ना वो कि जब हम संसार में थे। तुम ग्रस्तों को ये चाहिए जैसे मैंने कहा था ना अरे हम भैया तुम भी ग्रस्त हैं हम भी ग्रस्त हैं क्यों फुल्ला कहला जैसा नहीं बोलते हैं कि तुम ग्रस्तों को ऐसा करना चाहिए। महाराज आप कौन हो? किसी छुल्लक जी से एलक जी से भीमतारी जी से जाकर के ग्रस्त कह के देखना यदि बिना पिटे वापस आ जाओ ना तो हम तुमको 5 रुपए का इनाम देंगे। अब हमारी हैसियत तो 5 रुपए की है, है? प्रयोग करके देख सकते क्या बहुत प्रेम से क्या अपने धर्म तो दो ही है ना एक मुनि धर्म और एक ग्रस्त धर्म है ना? एक श्रावक और एक मुनि। तो अब मैं पूछता हूं नग्न दिगंबर दशा के बिना दिगंबर धर्म में कोई साधु हो सकता है? तो उसके पहले सब गृहस्थ ही है ना, साहब के ही है ना, तो उसमें सुल्लक ऐलक और अर्धका भी आ जाते हैं। गुणस्थान के हिसाब से कोई पंचम गुणस्थान से आगे नहीं हो सकते हैं। तो चौथा और पंचम गुणस्थान श्रावक धर्म है, गृहस्थ का धर्म है। ये द्रुपद पक्की करुणा नियोग की धर्म कांटे पर तुली हुई बात है। कह नहीं साहब आजकल बहुत आता है कि साहब आर्यिकाओं को भी वो पड़घाना चाहिए और अर्घ चढ़ाना चाहिए, तो पूजा नहीं हुई छुल्ले कई लग भी कहते हैं अर्घ चढ़ाना चाहिए। एक हमारे घर ब्रह्मचारी आए थे, बहुत दिन पहले की बात है, 40 साल पहले के, तो आगे खाना खाने पर बैठा था तो कहेंगे तुम मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि करो। काय की मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, हम उसके बिना भोजन नहीं करते, नहीं करते तो पता कहीं भी जल्दी बोलो, हमको जल्दी जाना है। कहाँ जाना है मालूम? हंदरी आगू मालूम नहीं मालूम, सुनो बहुत बढ़िया बात बताना हूँ। कहाँ जाना है कि यहाँ स्टेडियम में दंगल हो रहा है पहलवानों का, तो उसका मैं टिकट लेके आया हूँ, तो वो मुझे दंगल देखने जाना है, तो लेट हो जाऊंगा, इसलिए तुम जल्दी बोल रहा हूँ जल्दी बोल रहे तुम्हारा मारा सीन था। सच्ची घटना है, जब हम ऊपर रहते थे अब वो आरिका आरिका को नहीं साहब महावीर कहा है, महावीर जी कहा है। अरे वो तो महिलाओं का जो जहां तक पहुंच सकती हैं टॉप पे पहुंच गई तो उपचार से कह दिया, वो वास्तव में छठवां गुणस्थान थोड़ी है छठवां साधना, आप समझे ना। और अब तो उसमें लिखा है श्राप का चार में कि दिग्वृत लेते हैं ना अपन, दिग्वृत समझते हो ना, कि जीवन पर्यंत इस क्षेत्र के बाहर नहीं जाएंगे। देशवृत में कि मैं 1 महीने तक जयपुर के बाहर नहीं जाऊंगा, तो वहां लिखा है कि वो मर्यादा के बाहर अणुव्रत भी महाव्रत आए थे, वे महाव्रत जैसे हो जाते। क्या अर्थ है? तो हम बाहर नहीं जाएंगे तो किसी को मारेंगे नहीं तो अहिंसा महाव्रत हो गया, वहां किसी से झूठ नहीं बोलेंगे तो अहिंसा सत्य महाव्रत हो गया, वहां चोरी नहीं कर सकते हैं इसलिए अचोरी महाव्रत हो गया, वहां ब्रह्मचर्य किसी महावीर को छेड़खानी नहीं कर सकते हैं इसलिए ब्रह्मचर्य महाव्रत हो गया, और वहां हमारा कोई परिग्रह नहीं है इसलिए हमारा क्या हो गया महामत। अरे भाई वो तो ये महिमा बताने के लिए कि क्यों लो हमसे वहां कोई पाप नहीं हो इसके लिए, लेकिन ये तुम्हें किसने कहा कि किसी जीव को नहीं मारना उसका नाम अहिंसा महामत है? क्यों ये वहां पर प्रत्याशनागम कसाय का अभाव हो गया उनके, तो महाव्रत तो प्रत्याख्यानागण कसाई के अभाव में होते हैं, समझ गया। तो क्षेत्र की बात की तो वो उपचय दशभूत विभाग नय का कथन है, जब तक 3 कसाई का अभाव नहीं होगा तब तक महाव्रत हो ही नहीं सकते। क्यों त्रिवलिंगी के हो जाते हैं ना, नहीं होते हैं, होते ही नहीं, हो ही नहीं सकते। महावीर की तो शर्त है कि सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक 3 कसाई के अभाव हो, और उस वक्त जो दशा होती है उसका नाम महावीर है। वेद से महावीर कहने के ही है, नग्न दिगंबर दशा हो गई तो वो मुनि हो गए, क्यों फिर वो द्रिवलिंगी, वो तो भावलिंगी संतों की नग्न समय दशा को द्रिवलिंग कहते हैं। अब पार्थ फिर ये भी कह देते हैं इसमें भी, और महा द्रिवलिंग में शरीर की क्रिया और शुभ भाव दोनों आते हैं, और शुद्ध भाव वो आता है भावलिंग में, शुद्ध परिणति और शुद्ध भाव आता है भावलिंग में और मुनि के योग्य आचरण बाह्य में, वो और तत्संबंधी स्वभाव विकल्प वो आते हैं द्रव्यलिंग में। तो ऐसे कथन तो जिनवाणी में कर्मानुयोग योग में पद्मानुयोग में बहुत मिल जाएंगे। थोड़ा मंदिर तो कितना साफ लिख दिया के पद्म पुराण में राजा सैनिक को श्राप को उत्तम लिखा है, श्राप को उत्तम लिखा है ना, तो वो तो आवृत्ति थे और श्राप को उत्तम तो क्षुल्लक लख होते हैं। तीन तरह के श्राप होते उत्तम मध्यम दिगंत विदगे, तो उनको कैसे कह दिया? उन्होंने कहा राजा थे ना, श्रोताओं में बड़े थे, तब श्राप को उत्तम कह दिया। आप समझे ना, इसलिए उनको श्राप को उत्तम नहीं मान लेना, ऐसा लगा टोडामल जी ने। साहू जी ने समाज की बहुत सेवा की और कई दफे समाज ने उनका बहुत विरोध किया। एक दफे तो जब परिषद की मीटिंग थी उसके वे अध्यक्ष थे, शायद इसी जयपुर में या दिल्ली में, लोगों ने उनकी धोती खींच ली थी और स्टेज पर से छोड़ के भागना पड़ा था। और ये घटना जब हम मुरैना में पढ़ते थे तब घटित हुई थी। और उनमें हमारे गुरु जी थे ना, वो धोती खिंचवाने में मुखिया थे, तो वो आकर के रस ले लेके सुनाते थे, हमने ऐसा कर दिया, भागे स्टेज छोड़ के, भागे स्टेज छोड़ के, भागे। साधारण आदमी नहीं थे, सबसे बड़े उद्योगपति जैन समाज के एक छत्र नेता, उनकी धोती भरी सभा में लाल किले के मैदान पे जो खींच लेगा, खिंचवा सकता है, वो कितना आदमी होगा, समझ लेना। बहुत रस ले लेके हमें सुनाते थे। फिर उन्हीं साहू जी को सम्मेलन सकरना पंचकल्याणक हुआ, तो उन्हीं पंडित जी ने मिलके और सबने मिलके उन्हें श्रावक श्रोमणि की उपाधि दी। क्या क्या उपाधि दी? श्रावक श्रोमणि। तो जब वो खड़े हुए बोलने के लिए साहू जी, तो उनने कहा कि भैया श्रावक श्रोमणि किसे कहते हैं मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप मुनिराज लोग और पंडित लोग भी नहीं जानते क्या? श्रावक श्रोमणि कौन हो सकता है? श्रावक माने चौथे और पांचवें गुणस्थान वाले, श्रोमणि माने छुल्लक अहिलक। तो श्रावक श्रोमणि की पदवी तो किसी छुल्लक अहिलक को ही दी जा सकती है, और मुझे क्यों दे रहे हैं आप लोग? मैं कहां, मैं तो रात्रि भोजन का त्यागी भी नहीं हूं, मैं तो अंधेरे जल का भी पूरी तरह से त्यागी नहीं हूं, मैं तो वही सबसे नीचे वाला जो श्रावक होता है उसकी मर्यादाओं को भी नहीं पालता हूं, अब तो मुझे उस कुर्सी पर बैठा रहे हो, मैं ये उपाधि नहीं ले सकता। सब लोगों ने बहुत आग्रह किया कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपने बहुत सेवा की, ऐसा किया, समय शिखर को बताया, ये किया वो किया, बता तो आज तक नहीं, अब बताने वाले सैकड़ों हो गए जो अपनी उपाधियां ले ली उनने। सब कहते हैं हमने इतनी सेवा की, संवेदन की, अंतरिक्ष की, फलाने की, फलाने की, तमक्षी जी की, लेकिन एक बचा नहीं है अभी तक। आप समझे ना, ये नारकी, और उसमें कई सारे श्रावक श्रोमणी बन गए उनकी सेवा कर करके। मैं नहीं ले सकता हूं ये उपाधि। जब लोगों ने बहुत ज्यादा कहा और वे पंडित जी भी बोलने लग गए कि नहीं नहीं आपको लेनी ही पड़ेगी, कि भैया मैं समाज को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, एक मिनट में श्रावक श्रोमणी बनाते हैं और एक मिनट में धोती खींचने में देते हैं, इनकी मन की बात कहो तो श्रावक श्रोमणी बना देते हैं, और जरा एक बात इनके मन की नहीं हो तो धोती खींचने में देर नहीं करते। ये सभा में, उनने बड़ी सभा में कहा था और उस वक्त अखबारों में छपा था जब हम पढ़ते थे मुरैना विद्यालय में। ये सन 47 से 52-53 के बीच की बात है, मैं जो आपको बता रहा हूं। तो भाई ऐसे कथनों को तो पद्म पुराण को पेश कर दिया, वो तो सब गौतम था। ये तत्व के निर्णय में पद्म पुराण काम नहीं करता है, आप समझिए ना। तत्व का निर्णय तो शुद्ध अध्यात्म के आधार पर, और उसे बहुत अधिक उपयोगी है तो करना नहीं हो, वो धर्म कांटे से बात करता है, वो कर्णानी वो कभी नहीं कह सकता है कि चौथे गुणस्थान के पहले भी कोई साहब को उत्तम हो सकता है, वो नहीं कह सकता, वो कह ही नहीं सकता है कि पहले गुणस्थान में कोई मुनि हो सकता है। मुनि तो छठवें सातवें गुणस्थान वाले को ही कहते हैं। अन्ना जी आपको पढ़ाते हैं तो मुनि की बात जब छठवें सातवें गुणस्थान आता तब बताते हैं कि पहले से ही बताने लगते हैं, वो होते हैं ना, क्यों साहब? देखो यदि एकांत से अकर्ता कहा जाए तो जिस प्रकार शुद्ध निश्चय में से अकर्ता है उसी प्रकार व्यवहार में से भी अकर्ता पने को प्राप्त होगा। सर्वथा अकर्ता मानने पर संसार के अभाव का प्रसंग प्राप्त होगा। ठीक है, एक दूषण तो यह आता है और दूसरा दूषण यह आएगा कि उनके मत में आत्मा किसी भी अपेक्षा कर्मों का भेदक भी नहीं रहेगा, क्योंकि सांख्य आत्मा को भोक्ता मानते हैं, इस कारण उन्हें स्वमत के व्याघात का प्रसंग आएगा। यदि वो अभोक्ता कहेंगे तो सांख्य को जैसा मानना पड़ेगा, तो स्वमत के आघात का प्रसंग मतलब तुम्हारा खुद ही का मत खंडित हो जाएगा। ये सब न्याय की भाषा है, स्वमत के आघात का प्रसंग आएगा। इससे यह सिद्ध हुआ कि गुणस्थान संज्ञा वाले प्रत्यय ही कर्म करते हैं। ये गुणस्थान का नाम है प्रत्यय, ये व्याकरण के प्रत्यय अलग होते हैं, ये धर्म के प्रत्यय अलग होते हैं, व्याकरण के उपसर्ग अलग होते हैं और धर्म के उपसर्ग अलग होते हैं। जानते हो प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है व्याकरण की दृष्टि से? जानते हो? बहुत बोल रहे हैं। जो किसी शब्द के आरंभ में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। उपसर्ग लग जाए तो जैसे मुनियों को उपसर्ग लगता है ना, वैसे उन शब्दों को भी उपसर्ग लग जाता है और उनका अर्थ बदल जाता है। उपसर्गेण धात्वर्थम, जिस धातु का दो अर्थ होता है उपसर्ग लगा देने से वो अर्थ बदल जाता है। बलाद अन्यत्र नीयते, जबरदस्ती दूसरी जगह ले जाते हैं। देखो गम धातु है जाने के अर्थ में, आ उपसर्ग लगा दिया तो वो आना अर्थ हो गया, जाने से उल्टा आना है ना। गच्छति माने जाता है, आगच्छति माने आता है, और फिर अवगच्छति जानता है, अवगच्छति माने जानता, अब उपसर्ग लगाया तो जानना अर्थ हो गया। तो गच्छति जाना, आगच्छति जाना, अवगच्छति जाना, और प्रत्यागच्छति लौट के आना। समझे ना उपसर्गों से किस तरह से अर्थ बदल जाते हैं। और प्रत्यय से तो ती प्रत्यय लगाओ तो एक वचन, ता लगाओ तो दो वचन, फिर आसाधा ना सीता अंति है ना, समझिए ना, एक वचन से बहुत हो जाए, पुरुष बदल जाएगा, वचन बदल जाएगा, उससे कोई धातु का अर्थ नहीं बदलेगा है, समझिए ना। इससे यह सिद्ध हुआ कि गुणस्थान संज्ञा वाले प्रत्यय ही कर्म करते हैं, यह बात पूर्व सूत्र में कह दी ही थी। इसलिए जीव शुद्ध निश्चय में से कर्मों का कर्ता नहीं है, गुणस्थान वाले संज्ञा वाले प्रत्यय ही कर्मों के कर्ता हैं, यह सम्मत ही है। तो गुणस्थान तो 14 होते हैं पर यहाँ बार बार 13 गुणस्थान कहा जा रहा है, इसका क्या कारण है? यहाँ बंद के कारण रूप प्रत्ययों की चर्चा है जो चार प्रकार के बताए गए हैं, मिथ्या, अवृत्ति, कषाय और योग। इन चार सामान्य प्रत्ययों को विशेष प्रत्ययों के रूप में ही यहाँ गुणस्थानों की चर्चा है। 14वें गुणस्थान में इन चार प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय नहीं है, अतः यहाँ 14वें गुणस्थान को नहीं दिया गया है। नियम सार में मूल गाथा में एक कलर टीका में ये बात स्पष्ट आई है, मैंने सार बताई थी एक दिन, इसमें तो अपन ने अपनी तरफ से लिखी है लेकिन उसमें मूल में आई है। अरे भाई यहाँ गुणस्थानों की चर्चा बंध के प्रत्ययों के रूप में है, अब तुम और बात में मत लेना। जब 14वें गुणस्थान में बंध ही नहीं होता तो फिर उसे वन्य के कारण रूप कृत्यों में कैसे गिनाया जा सकता है। अतः यही उचित है कि जब वन्य के कारण या वन्य के कर्ता के रूप में गुणस्थानों की चर्चा हो तब 13 गुणस्थानों की बात ही लेना चाहिए। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि 13 गुणस्थान अथवा मिथ्या दृष्टि आदि प्रत्यय ही कर्मों के कर्ता हैं, कर्म बंध के कारण हैं, आत्मा नहीं। अब एक एक फिर निष्कर्ष का लिखाना अंत में, माने हमने ये क्या बात इतना लंबी चौड़ी बहस करते हैं ना, तो फिर भूल जाते हैं कि इसमें क्या कहना है। बीच में पूर्व पक्ष भी आता है, उत्तर पक्ष भी आता है, तो हम यहाँ गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए अंत में हम निष्कर्ष लिख देते हैं कि भाई इसमें इस तरह के सारे प्रकरण का सार ये है कि हमने ये सिद्ध किया है। देखो हम लिखते हैं ना, बच्चों की कहानियां होती हैं तो पूरी कहानियां सुनाते हैं, पर अंत में लिखते हैं कि इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है। ये नहीं लिखे तो वो विद्यार्थी उससे वो शिक्षा निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। कल नहीं ना, इसलिए निकाल के हम देते हैं। और मैंने कहा उल्टा निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है, जैसे कल ही मैंने उदाहरण दिया था ना वो भरत चक्रवर्ती वाला, ऐसा एक और उदाहरण इसमें बहुत बढ़िया है कि एक बहुत अच्छी तरह नाटक तैयार किया हरिश्चंद्र, लिखा था किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी में राजा हरिश्चंद्र नाटक लिखा है, उसको प्रस्तुत किया बहुत बड़े पैमाने पर। तो पत्रकार लोग आए, मतलब एक पगड़ी छाप सेठ जी वो नाटक देख के बाहर निकले तो उनने पूछा सेठ जी कैसा लगा नाटक, तो बहुत अच्छा, कि क्या सीखने को मिला, कि ये सीखने को मिला कि सत्य बोलवा में काई माल न थी। हरिश्चंद्र जैसे दर-दर के भिखारी बनना हो, पत्नी बच्चों को खोना हो, राज्य खोना हो, तो सत्य बोलना, ऐसा भी निष्कर्ष निकाल। जिसने ये नाटक लिखा है उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई आदमी इससे ये शिक्षा लेगा, वो तो ये समझता है जैसे सत्य पे हरिश्चंद्र दे रहे ऐसे ही अपन को देते रहना चाहिए। मैं इसे क्या कहना चाहता हूं कि नाटक कैसा लिखना चाहिए, घबराना नहीं, हरिश्चंद्र कभी पे मैं प्रश्नवाचक नहीं लगा रहा हूं, कि जिसका एक ही तरफा संदेश जाए, तुम यथार्थ के नाम पर सब कुछ दिखाओ, जेब काटना, जेब कटरे ने कैसी कैसी जेब काटी, और फिर बताओ कि आप जेब कटरा खूब करोड़पति हो गया, तो ठाट बाट से रहने लग गया क्यों, तो इसके लिए बताओ कि उसको बताओ तो जेल हो गई कैसी उसकी दुर्दशा भई ये बताओ, जबकि बहुत से जेब कटरे करोड़पति बन के बहुत मजा करते हैं। सत्य तो ये है यथार्थ, लेकिन ये ऐसा दिखाया नहीं जाना चाहिए। फिर भी आप यही दिखाओगे उसे जेल हो गई, ये हो गई, वो हो गई, तो भी जेब कतरे लोग उसे देखकर जेब कतरने की एक नई तरकीब सीख सकते हैं। चोर लोग ताड़ा तोड़ने की एक नई तरकीब सीख सकते हैं, उसे तिजोरी खोलने की एक नई तरकीब सीख सकते हैं। क्या कि यदि उसे कोई छत उगलवाना हो तो कैसी पिटाई करना चाहिए तो वो सब उगल देगा, ये भी सीख सकते हैं। ख्याल नहीं कि नहीं, दुरुपयोग तो किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन फिर भी इतनी सावधानी अपेक्षित है कि उसका कम से कम दुरुपयोग हो और अधिक से अधिक सदुपयोग हो। ऐसा जुर्माने में भी है कि हम उस चीज को किस रूप में प्रस्तुत करें कि जिससे अपर पक्ष की किसी का ध्यान ज्यादा ही नहीं, सीधा सही अर्थ ही उसके ख्याल में आए, और बाकी कुछ दुष्ट लोगों के लिए छोड़ दें, क्या क्या करें, अब उनका बुरा होना ही होगा। और टोलामल जी की भाषा में कि उनका भविष्य विचार करके ही संतोष होता है।